हरे कृष्ण
जो भी मालूम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे शानो प्रभु जी की
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से ये श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र सूरत इस्कान में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, भगवान का वाणी के रूप में अवतार है और श्रीमद् भागवत के पाठ के कुछ पद स्कंद पुराण में महत्तम में लिखा है कि निर्गुण परायण, निर्गुण परायण भागवत का होता है नित्यम भागवत सेवया। उसमें केवल भगवान की प्रीति की प्राप्ति, कृष्ण प्रीति अर्थे भागवत का श्रवण वर्णन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ श्री प्रभुपाद ने प्रतिदिन सुबह भागवत के सत्संग का श्रवण वर्णन का जो विधान स्थापित किया है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ इस केंद्र में पहले स्कंद का तीसरा अध्याय चर्चा का विषय है। तीसरे अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषि ने पूछा कि भगवान का अवतार कैसे होता है, उनकी लीलाएं क्या है। तो भगवान के अवतार के विषय में प्रश्न के उत्तर में इस तीसरे अध्याय में भगवान के कोई 22 अवतारों का वर्णन है। और अवतारों का वर्णन करते 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 जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अवतार का विषय आया तो सावधान होकर व्यास देव ने कहा, नहीं नहीं, अभी तक जो हमने अवतारों की लिस्ट आपको गिनती कराई है ये तो या विस्तार है या कला है, या उसका विस्तार है, अंश है या कला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। हरे कृष्ण। तो ये एक सिद्धांत स्थापित किया गया कि अवतार जितने भी आते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु जो गर्भ सागर में शयन करते हैं इस ब्रह्मांड के जो परमात्मा हैं, जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है ऐसे जो ब्रह्मांड की आत्मा है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। वो समय समय के ऊपर अवतार लेते हैं धरती के ऊपर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य जो है उन अवतार की श्रेणी में नहीं आता है। वो नेम से ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में प्रकट होते हैं, और उनका उद्देश्य अवतार का ब्रज की लीलाओं से भक्तों को आकर्षण करना है। वो सारे अवतारों का उद्गम स्थान है, स्रोत है, अवतारी पुरुष है। ऐसा वर्णन करने के बाद अब कल इस विषय के ऊपर चर्चा ऐसे शुरू की थी कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका प्रकट्य कभी तो खंभे के अंदर से होता है, जैसे नरसिंह देव का हो गया, कभी ब्रह्मा जी की नासिका से होता है जैसे वाराहदेव का हो गया, कभी ऐसे कहीं से भी मच्छ के रूप में समुद्र नदी के अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो जब कहीं से भी आ सकते हैं तो किसी भक्त के मन में भी प्रकट होते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान का जो प्रकट होना है और उनकी जो लीलाएं हैं, जो वो काम करते हैं, ये सामान्य मानव जैसे नहीं होते, ये अलौकिक है, ये दिव्य है। इसको कौन जान सकता है जिसकी भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास और श्रद्धा है, वही ये जान सकता है। जो अपने मन से उसको समझने का प्रयास करेगा, तर्क वितर्क से समझने का प्रयास करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म तक पहुंच पाएगा कि भगवान ब्रह्म है। यहां से आगे उसके निषेध करे, ये नहीं है भगवान, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बस केवल ब्रह्म तक पहुंच सकता है, उससे आगे वो नहीं पहुंच सकता। तो जन्म कर्म चमे देवम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। तो ये जो तत्व भगवान का समझना है ये भगवत तत्व समझना है। इसको कौन समझ सकता है कल, इसके ऊपर कौन नहीं समझ तक सकता है, इसके ऊपर कल चर्चा हुई। जो माया से मोहित हैं, जिनकी बुद्धि जिसको भगवान ने बुद्धि योग नहीं दिया है, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं वो नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से प्रयास करने से नहीं समझ सकते हैं, जिसको भगवान कृपा करके बुद्धि योग देता है वही समझ सकते हैं। तो किसको भगवान बुद्धि योग देता है? जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उस सेवा में न कोई विविधान पड़ता है न कोई उसमें कोई हेतु है, ऐसे प्रेममयी भगवान की सेवा करने को भगवान कृपा करके ऐसी बुद्धि देते हैं जो भगवान को जाना जा सकता है। तो आज हम 39वें श्लोक से लेकर इस अध्याय को पूरा करेंगे, तो 5-7 श्लोकों का चर्चा करेंगे। तो आज मेरे ख्याल में यहां 39वां श्लोक लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। अथ इह धन्या भगवन्त इत्थम् यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म आत्मकात्म भावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अथ इह धनया भगवन्त इत्थम् यद वासुदेवे अखल लोकनाथ कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम् न यत्र भूयाद परिवर्त उग्रः अथ इह धन्या भगवन्त इत्थम् यद वासुदेवे अखिल लोकनाथ कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः न यत्र भूय परिवर्त उग्रह, ऐसे लोगों के लिए फिर दोबारा इस दुखी संसार में उग्र जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। यह आखिरी लाइन का अर्थ है। यह संसार में क्या है? उग्र, उग्र का मतलब दुख देने वाला, परेशान करने वाला। परिवर्त मतलब वापस लौट के आना, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। कौन जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता? कौन संसार के संकट से बच जाता है जन्म मृत्यु से? तब कहते इह इस लोक में, अथ इसलिए, इस लोक में धन्य वो बड़े भाग्यशाली है, वो बड़े भाग्यशाली है, वो धन्य है, उनका वो बड़े वो सफल है, उनका जीवन सफल है, ये धन्य जीवन है। किसका? भगवंत इत्थम, जो भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते। जैसे आप कथा सुनने आए, सुना की कथा है तो आए, इसको बोलना जिज्ञासु। ये भागवत में प्रभुपद के तात्पर्य में लिखे है कि जैसे सारे ये ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के अवतार के विषय में, तो ऐसी जिज्ञासाएं भगवत इत्थम, ऐसी भगवान के विषय में जिज्ञासाएं कौन भगवान के लिए? यद वासुदेव अखिल आत्मना, वो कौन है भगवान? बोला वासुदेव अखिल लोकनाथ, सारे लोकों का नाथ, जो अखंड ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी सर्वत्र सर्वव्यापक वासुदेव, उसके विषय में जो जिज्ञासा करता है, कुर्वंती करता है, सर्वात्मकम आत्मभावम, सर्वात्मकम प्रभुपाद लिखा है 100%। सर्वात्मकम का मतलब शरणागत होकर, सर्वात्मकम सब कुछ हमारे जीवन का उद्देश्य है। असल में जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने आप को जानना, भगवान को जानना, और दोनों के बीच में संबंध क्या है इसको जानना। ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, अपने आप को जानना, भगवान को जानना। अपने आप को जानने को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानने को कहते हैं भगवत साक्षात्कार, और ये दोनों जानने के बाद संबंध होता है तब भक्ति होती। संबंध नहीं हो तो भक्ति नहीं है। अपने आप को जानना, भगवान को जानना, और दोनों के बीच में जो संबंध है उसको पुनः उनको उसको पुनः जागृत कर लेना, उसको पुनः जान लेना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वो संबंध किसके ऊपर आधार होता है? प्रेम के ऊपर। तो भगवत प्रेम हमारा अपने आप को जानना, ये इन शब्दों को कभी सरल भाषा में हम ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है मैं कौन हूं ये जानना। भगवत साक्षात्कार मतलब भगवान के बारे में जानना, और दोनों का संबंध भगवान का और आत्मा का, जीव आत्मा का क्या संबंध है इसको जानना। तो ये तीन चीजें हो गई। सरल भाषा में कहीं हमने पहले कहा भी हो, शायद हो सकता है, जैसे छोटी सी बच्ची 5 वर्ष की होती है, वो किसी के पास भी जाएगी, किसी से मिल सकती है, कोई भी उसको आलिंगन करे, गले चूम ले, तो कोई न बच्ची के मन में विचार आता है, ना कोई उस खेल रहा है उसके मन में विचार आता है। लेकिन बच्ची 16-17 साल की होती है तो वो समझती है कि अब सबसे मिलना मेरा काम नहीं है, अब मैं लड़की हो गई हूं, अब मैं जवान हो गई हूं, तो उसके मन में ऐसा भाव आता है, फिर सबसे नहीं मिलती है। ऐसे संसार में पहले आदमी जो आता है खाता है, जो आता है उससे मिलता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो समझता है नहीं, सबसे मिलना ठीक नहीं है, सब कुछ खाना ठीक नहीं है, ये उसको समझ में आता है कि अब मेरे को चलो मैं ऐसा नहीं है। तो ये आत्म साक्षात्कार हो गया कि अपने आप को संभाल जाना। लेकिन इसमें वो लड़की का जीवन परिपूर्ण नहीं हो गया, अब उसको क्या चाहिए, अब उसको प्रेम करने वाला पति चाहिए, अब उसको घर चाहिए। तो ये दूसरा स्तर है भगवत साक्षात्कार करना, कि भगवान का वर्ण करना, वरेण्यम का मतलब भगवान का वर्ण करना। अभी तो भगवान जो सर्वलोकनाथ है, जो जगन्नाथ है, उसको जानना है। तो दूसरा स्तर क्या है, पहले अपने को जानना, फिर और सिद्धांत क्या है, जैसे सूरज उगता है तो हम अपने आप को भी देखते हैं और सूरज को भी देखते हैं। जब सूरज नहीं उगा है ना अपने आप को देखते हैं, ना सूर्य को देखते हैं, और ना दुनिया को देखते हैं। तो ऐसे भगवत साक्षात्कार होने से जैसे सूर्य का उदय हो गया तो सूर्य भी देखने आया, अपने आप को भी देखा और दुनिया को भी देखा, तीनों एक टाइम पे देख लिया। तो भगवत साक्षात्कार जो है वो दूसरा स्तर है, और उसके बाद संबंध, कि संबंध होगा तभी जाके सुख मिलेगा। और संबंध में भी जो मुख्य है वो प्रेम है, वैसे संबंध बंधन है। संबंध और बंधन में कोई अंतर नहीं है, अगर प्रेम नहीं है तो बंधन है, और प्रेम नहीं है तो कभी थकते ही नहीं, प्रेम से काम करने में कभी थकता नहीं है। तो ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो सर्व आत्मकम का मतलब आत्मभावम, आत्मभावम आत्मभावम को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना। भाव प्रेम के, प्रेम से पहला शब्द होता है भाव। प्रेम प्रकट नहीं होता है, उससे पहले स्थिति जो होती है उसको भाव कहते हैं। उदाहरण देते हैं, सूर्य उगा नहीं है अभी, लेकिन पूर्व दिशा में लालाई हो गई तो कह के बाद अब तो सूर्य उगने में देर नहीं है। तो सूर्य उगने से पूर्व जो लालाई पूर्व दिशा में होती है उसको भाव कहते हैं। भाव का मतलब अब प्रेम प्रकट होने वाला है, अब अपने आप हो जाएगा, अब उसमें रुकावट नहीं है। तो आत्मभावम का मतलब प्रेम के प्रकट्य से पहले का स्तर। इस भाव से भगवान जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान को जानने के लिए। और भगवान के प्रकट होते ही भगवान का अपना और संसार का सब दर्शन हो जाता है, जैसे सूर्य के उगते तीनों साथ हो जाते हैं। तो भगवत जिज्ञासा, इस श्लोक का अर्थ है कि जो ऐसी जिज्ञासाएं करते हैं उनका जीवन धन्य है, वो सफल है जीवन में, जो भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा करते हैं। और ऐसी जिज्ञासाएं अलौकिक आनंद का अनुभव कराती हैं और सर्वलोकनाथ से संबंध स्थापित कराती हैं, और फिर निश्चित रूप से 100% दोबारा वो इस जन्म मृत्यु के दुखदायी संसार में नहीं आएगा, नित्य निरंतर भगवत धाम में आनंद से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसी जिज्ञासाएं मिलेंगी कहां जाएं, जो ऐसी जिज्ञासाएं कहां करें, कोई उसके लिए शास्त्र है, कोई साधन है। तब ये श्लोक आता है 40वां। आइए 40वां श्लोक का पाठ करते हैं। आपके पास जिसके पास है वो खोल लीजिए। इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि नेह श्रेयस्य लोकस्य धन्य स्वस्ति अयनम महा। अब ये बहुत सुंदर है, इदम भागवत नाम पुराणम, जहां भगवान के अवतारों का वर्णन किया है तीसरे अध्याय पहले स्कंद में और दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय में फिर भगवान के अवतारों का वर्णन है। वहां नारद जी का अवतार में वर्णन नहीं है, यह नारद जी का अवतार में वर्णन है, तो दोनों को मिलाएंगे तब 24 अवतार होंगे। दो के साथ में नारद का वर्णन नहीं है अवतार में, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपने बेटे को नहीं कह सकते भगवान है, तो वहां नारद जी का नाम नहीं है, यहां नारद जी का नाम है। तो हाई ग्रीवा धनवंतर ऐसे कोई कुछ उधर है, ऐसे करके सब 24 है। उधर भी जहां अवतारों का वर्णन पूरा होता है वहां लिखा है इदम भागवत नाम पुराणम। तो ये जो भागवत नाम का पुराण है एक अर्थ ये है, और ये भागवत जिसमें भगवान के नाम का वर्णन है, तो मुख्य जो भगवान के नाम का वर्णन है, गुण का वर्णन है, लीला का वर्णन है, ये भागवत नाम जो पुराण है। उधर भी भागवत नाम पुराणम, ये भागवत नाम पुराण कैसी है, ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम श्रील प्रभुपाद ने इसका अर्थ है भगवान का अवतार है, ये भागवत नाम पुराण भगवान का अवतार है। अब दो श्लोकों के बाद ये छठे प्रश्न के उत्तर में आएगा, ये भगवान का अवतार है, इसमें क्या है, उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के नाना प्रकार के अवतार के लीलाओं का वर्णन है, चरित्र का वर्णन है। और ये किसने भैया आखिर लिखा, किसने भगवान का, किसने ये वर्णन किया, तो लिखा है चकार भगवान ऋषि है, और इसको इसको प्रकट करने वाला भी भगवान का अवतार ही है वेदव्यास ऋषि। तो ये किसी सामान्य संसारी मोहग्रस्त व्यक्ति के द्वारा वर्णित नहीं है, भागवत का वर्णन किसी संसारी व्यक्ति ने नहीं किया है, जो जिसकी इंद्रियां मोहित हो सकते हैं, जो गलती कर सकते हैं, ऐसे ने नहीं किया है। ये तो भगवान के अवतार भगवान ऋषि ही, ऋषि का मतलब वेदव्यास ऋषि के द्वारा इसका वर्णित है। अब यहां एक सिद्धांत और को समझने चलना चाहिए, तो क्या व्यास देव ने भागवत का प्रकट्य किया, उससे पहले भागवत नहीं था क्या, ये प्रश्न ऐसे किया जा सकता है। तो इसलिए पहले कह दिया कि ये ब्रह्म, ये भगवत संहिता है, ये ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता है जो भगवान के समान है। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान जब अवतार लेते हैं उससे पहले होते हैं कि नहीं होते, भाई भगवान का जब अवतार हुआ श्री कृष्ण उसके पहले थे कि नहीं थे, अनादिर आदिर गोविंदा, वो तो नित्य है, अवतार काल में प्रकट होते हैं, नहीं तो अप्रकट रूप में तो सदा रहते हैं। अच्छा अब भगवत गीता को देखिए, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, फिर ये लुप्त हो गया, अब फिर आज तुम्हें अर्जुन दे रहा हूं, इसका मतलब अर्जुन को भगवान ने गीता दी, उससे पहले गीता थी ना, भाई गीता क्या है, भगवान की वाणी है, तो भगवान नित्य है, तो फिर क्या भगवान की वाणी अनित्य होगी क्या, तो भगवान नित्य है तो भगवान की वाणी भी नित्य है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है, ऐसे भागवत भी नित्य है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है, जैसे कभी भगवान अवतार लेते हैं और कभी नहीं दिखते हैं, जैसे अभी भगवान नहीं दिख रहे, लेकिन पहले 5000 साल पहले भगवान इस धरती के ऊपर चले, तो ऐसे भागवत पहले थी फिर अप्रकट हो गई और फिर दोबारा व्यास देव ने प्रकट किया। तो ये इसलिए पद्म पुराण में महात्म है, स्कंद पुराण में भागवत का महात्म है, तो वहां महात्म कैसे लिखा, वो तो पुराण पहले थी और भागवत बाद में लिखी गई, तो उसमें पुराण में उन पुराणों में महात्म कहां से आया, तो भागवत नित्य है उस, और ये सब जैसे मंत्र भगवान का नाम नित्य है, लेकिन किसी ऋषि के तपस्या से हृदय पवित्र होता है तो उसमें उसका प्रकट्य होता है, तो वो ऋषि उस मंत्र का ऋषि हो जाता है। तो वेद व्यास इस भागवत के ऋषि हो गए, क्यों? उसके ऋषि का अर्थ होता है देखना, सीयर, अंग्रेजी में कहते हैं ऋषि को सीयर। तो जिसने देख लिया, उसको पहले से था लेकिन उसको देख लिया, उसको ऋषि कहते हैं। तो भागवत नित्य है, शाश्वत है, और इस भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों का, भागवत के दो शब्द हैं, भागवत का मतलब भगवान और भागवत का मतलब भगवान के भक्त। तो ये भक्त और भगवान की महिमा का जो शास्त्र है, इसमें क्या है, ये किसने वर्णन किया है? ये भगवान का अवतार है, व्यासदेव भगवान ऋषि ने वर्णन किया है, और फिर लिखा है इसका उद्देश्य क्या है। ये असल में पहला प्रश्न है ऋषियों का कि सबका श्रेय क्या है, आत्यंतिक श्रेय क्या है। आत्यंतिक श्रेय का मतलब भाई इसके बाद कोई और प्रश्न उठे ही नहीं, लाजवाब, आत्यंतिक श्रेय, इसके बाद कोई और चीज बड़ी हो नहीं सकती है, सबका हित किस में है, अल्टीमेट, अल्टीमेट बेनिफिट, ने श्रेयस का अर्थ है अल्टीमेट बेनिफिट। अत्यंतिक श्रेय सबका क्या, निःश्रेयस लोकस्य, सबका आत्यंतिक श्रेय, सबका लाजवाब लाभ ये भागवत में है। क्या करने से, धन्य स्वस्ति अयनम महत, ये चार शब्द हैं अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, धन्यम फुली सक्सेसफुल, पूर्ण सफलता, जीवन की पूर्ण सफलता, स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम ऑल ब्लिसफुल, प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लिखा है, मतलब आनंद प्रदायनी, पूर्ण आनंद का स्वस्ति कहते हैं भाई, स्वस्थ है आदमी, वैसे समझ, मंगल, मंगलकारी, आनंद देने वाली है, महत, महान, परिपूर्ण। तो भागवत क्या है, भागवत भगवान का अवतार है, और दूसरे भगवान के अवतार व्यास देव ने इसको प्रकट किया है, और ये सबका आत्यंतिक श्रेय के लिए, सबको पूर्ण सफलता, पूर्ण आनंद और पूर्ण महत्व, पूर्ण सिद्धि देने वाली है। तो भगवान के विषय में जिज्ञासा करके कहां से सुनना चाहिए, बोला भागवत से सुनना चाहिए। एक तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता, और फिर श्रीमद् भागवत, भगवान के सारे गुण रूप लीला के वर्णन के लिए जो प्रकट हुए हैं, ये दोनों भगवान के समान हैं। और श्रील प्रभुपाद का इस श्लोक का तात्पर्य बहुत अद्भुत है कि भागवत भगवान श्री कृष्ण के समान है, इसको ऐसे पूजा करनी चाहिए जैसे भगवान की पूजा की जाती, ये भगवान के समान इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको कहा है अमलम प्राणम, भागवतन प्राण अमलम, अमल का मतलब इसके अंदर कोई भी वैसे मैल नहीं है। तो क्या मैल क्या हो सकता है, भागवत के दूसरे श्लोक में, पहले अध्याय में, मंगलाचरण में ये कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म को इसमें से निकाल दिया गया है, भागवत में कैतव धर्म नहीं है। और कैतव शब्द का अर्थ है लालच देने वाला, धोखा देने वाला, जैसे बहुत से शास्त्रों में स्वर्ग का लालच है कि आओ आओ स्वर्ग में आपको सुख मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के सुख के बाद वापस नीचे पटका जाएगा इसका वर्णन तो है नहीं, भाई स्वर्ग में आओ आओ स्वर्ग में आओ, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद क्या होगा, बोला जब पुण्य खत्म हो गए फिर वापस दुनिया में आना पड़ेगा, वो तो नहीं बता रहे। तो ये धोखा हो गया ना कि आप तो आइए आइए हमसे ये सामान लीजिए, लेकिन लेने के बाद क्या होगा, बोले घर जाते हुए खराब हो जाएगा, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं चले। तो ये जो धोखे वाला काम है, तो भागवत नाम के पुराण में कोई भी, तो इसलिए ये कहते हैं कि जहां भगवत गीता पूर्ण होती है, जहां सर्वधर्मान परित्यज का वर्णन है कि और सारे धर्मों को, कौन से धर्मों को, कैतव धर्मों को निछोड़ किया हो, सर्वधर्मान परित्यज की परिभाषा करेंगे अगर भगवत गीता में, तो कौन सा धर्म भगवान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एक जगह कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं धर्म स्थापन करने के लिए, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत, और फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, क्या उस धर्म को छोड़ने के लिए कहते हैं जिसके लिए अवतार लेते हैं? नहीं, तो कौन से धर्म को छोड़ने के लिए कहते हैं? कैतव धर्म को छोड़ने के लिए कहते हैं। कैतव धर्म क्या है? जो शरीर से संबंधित धर्म है। और कौन सा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए? भागवत धर्म, जो भगवान देता है। जब भगवान धर्म देते हैं उसका नाम है भागवत धर्म। और कैतव धर्म क्या है? जो मानव ने बना के रखा है, और जो धर्म भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले हैं, भगवान तक पहुंचने नहीं देते, बीच में ही रुकावट डाल देते हैं। भाई भगवान तक जाने से, किसी ने कहा कि भगवान आपको मिलेगा, कहे कि ये प्रभुपाद जो उस स्पिरिचुअल सेंटर खोला है इसमें आज शाम को 5 बजे भगवान मिलेंगे, दर्शन होगा, कोई ऐसे अनाउंसमेंट कर दे, और सचमुच भगवान नारद जी के कहने के ऊपर यहां आके बैठ भी जाए, समझो। लेकिन फिर क्या होशियारी भगवान करते हैं कि यहां से आने से पहले ये बाहर जो रोड है ना, इधर एक फ्री रेस्टोरेंट लगा लेते हैं, आइए आइए 56 भोग फ्री में खाइए। अब आदमी आते ही बोलेगा भगवान कहां जाएगा, ऊपर ही बैठा है, और टाइम फिक्स है 5 बजे का, तो आदमी पहले तो टाइम से आएगा ही, 4:45 बजे पहुंचेगा कि ऊपर जाता हूं, और लेकिन वहां जो, और वो वहां जो है वो घी डाल के ऊपर छड़क के और फ्राई हो रहा, पूरियां और ये मिठाइयां बन रही है, तो आदमी ऊपर जाने से पहले, लिफ्ट से जाने से पहले उधर चला जाएगा और वहां खाने में बैठ जाएगा, बोले खा लेते हैं ये तो, अभी तो 2 मिनट पड़े हैं पहुंच जाएंगे, और ऊपर आते हैं तो लिफ्ट खराब पड़ी, अब जाएं कहां से, और चढ़ सकते नहीं, हमारे चलो नीचे रह गए कि नहीं रह गए। भगवान तो यहीं बैठे हैं, लेकिन बीच में इतनी बाधाएं डाल दी हैं वहां अन धर्मों ने, कौन से धर्मों ने, एक कैतव धर्म हो गया कि नहीं हुआ, बीच में खाने का ऐसा सजा के रख दिया कि आओ आओ खाओ, अब खाओ क्या, नहीं भूख हो तो भी, हम कई बार आपको बताया होगा कि वो बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं जिस गली में, वहां आलू टिकिया वाला बैठा होता है, जब आप वहां से गुजरेंगे ना तो घी का छड़का देके और टिकिया को रखेगा छू, और वो जैसे खुशबू नाक में आएगी बांके बिहारी भूल जाएगा, उधर बैठ के टिकिया खाएगा और जाएगा तब तक पर्दा बंद। तो ऐसे धर्म, वो मानो एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ बहुत अच्छे गाने बजाने वाले हैं जो नृत्य कर रहे हैं, और वो ऐसा आकर्षण वाला नृत्य, फ्री में आइए देखिए, अब कान रस मिल गया, यहां जीभा का रस को दिखा दिया, तो ये भोग हो गया कि नहीं हो गया, ये तो स्वर्ग बना दिया, बाहर तो भगवान तक तो कोई पहुंचना नहीं है, और स्वर्ग तक पहुंचा और वहीं से लौट के चला गया। तो ऐसे ये सारे धर्म कैतर धर्म कहलाते हैं, इनको भागवत से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो जहां भगवत गीता खत्म होती है वहां से भागवत शुरू होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य भागवत गीता की पूर्ण आहुति हुई और धर्म प्रयुजित प्रोजित कैतव से भागवत शुरू हुई। तो ये भागवत जो है ये, इसके अंदर कहीं धोखे का, इसमें कोई मल है ही नहीं, मल का मतलब जो हमको बीच में रुकावट डाल दे भगवान के जाने में, तो कोई मल नहीं है महाप्रभु। और फिर प्रभुपाद जी का इसके तात्पर्य में एक सावधानी ये है विशेष, किसी चेतना महाप्रभु का जो सेक्रेटरी उनके साथ रहता था, सचिव स्वरूप दामोदर, जो ललिता सखी थी भगवान राधा रानी की, जो जो बहुत अंतरंग सहेली है, वो एक बात सबको कहता था, सबको भागवत पढ़ना भाई, भागवत सुनना, लेकिन एक शब्द और कहता था, भागवत गीयते भागवत स्थाने, भागवत सुनना लेकिन भागवत पुरुष से, भागवत सुनना जरूर लेकिन भागवत पुरुष से। भागवत पुरुष से का मतलब है जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करके भगवान की भक्ति करने वाला हो उससे भागवत सुनना। और सावधानी क्या बता दी कि भागवत तो बहुत अमृत है, भगवान वैसे भागवत के अमृत में और स्वर्ग के अमृत में कितना फर्क है, कितना अंतर है? भागवत का अमृत जो है अनंत है, भागवत अमृतम, और स्वर्ग का अमृत कैसा है? तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। उस अमृत को पीने के बाद भी वापस पतन होता है, सदा नहीं रह सकते वहां, क्षीण पुण्य। और भक्ति को कैसा अमृत बताया है भगवत गीता में, 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक, ये धर्मामृतम यथोक्तम परियुपास्ते शरदधाना मत परमा भक्तास्ते अतिमे प्रिय। जो भागवत धर्म का अमृत पीते, कौन से धर्म का? भागवत धर्म का अमृत। वो धर्म का अमृत जो है, वो धर्म का अमृत है, और स्वर्ग का अमृत दूसरा है। तो ये भागवत के स्कंद पुराण अपने स्कंद पुराण के महात्म्य में है, ये पद्म पुराण के महात्म्य में है। सुखदेव महाराज जब भागवत का अमृत पिलाने के लिए परीक्षित महाराज के पास गंगा के तट पे सुखताल में जा रहे थे, तो इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश स्वर्ग वाला लेकर, और कहा सुखदेव गोस्वामी, तक्षक सर्प काटेगा, परीक्षित को अमृत पिला देना, मरेगा नहीं, और इसके बदले में हमको भागवत का अमृत पिला दो। तो सुखदेव महाराज ने कहा, उठा तेरा अमृत का कलश और जा वापस, तुम भागवत सुनने का अधिकारी नहीं हो, तुम भागवत का मोल लगा रहे हो, तेरे स्वर्ग का अमृत भागवत के अमृत की कीमत है, उठाओ, नहीं तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो। और इंद्र को न सुनाई और वहां से रवाना कर दिया। इससे एक सीधा तात्पर्य निकलता है जो प्रभुपाद ने बहुत सावधानी से दिया है, जो भागवत सुनाने के पैसे मांगता है उससे भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। यह बात इसका अर्थ है, कहे के कथा करने का मुझे इतना इतना देना है आपको, तो वो कथा किसी काम की नहीं है, उस कथा में रस रहेगा ही नहीं। इसका अर्थ सीधा यह है, क्योंकि उसमें कथा कर उसको भगवान की कथा नहीं देनी है, वो तो सोचता रहेगा कितना मिलेगा, तो उसके दिमाग में भगवान नहीं होगा, माया होगी, तो वो कहां से भगवान दे सकता है। तो बहुत सावधानी लिखी है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह करते थे भागवत निरंतर सुनना चाहिए। महाप्रभु ने तो गोपाल भट्ट को कहा कि बेटा भागवत पढ़ लेना, पूरी जीवन भागवत को सीखना, तो भागवत आचार्य है। रोज प्रतिदिन चेतना महाप्रभु भागवत सुनते थे जाकर गदाधर पंडित से। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी भागवत की कथा कर रही थी रोज। स्कंद पुराण के महात्म में है कि शंकर जी ने पूछा, भगवान मेरे को प्रलय का कार्य करना पड़ता है, सब लोगों को विनाश करना पड़ता है, मैं कैसे हमेशा आपका ध्यान पक्का करके रखूं? बोला भागवत का पाठ किया करो। ब्रह्मा जी ने पूछा, रजोगुण का मुझे तो उत्पत्ति करनी है, तो रजोगुण से उत्पत्ति होती है, तो मैं सदा कैसे आपका ध्यान? बोला भागवत का पाठ करो। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे को तो सबका पालन करना है, चोर का भी करना है, तो साध का भी करना है, तो मैं कैसे अपने आप को संतोलन? बोला भागवत का पाठ करो। तो भगवान विष्णु एक महीना भागवत का पाठ करता है और लक्ष्मी सुनती है, और फिर लक्ष्मी जब पाठ करती है तो दो महीना पाठ करती है और भगवान विष्णु सुनते हैं। ब्रह्मा जी को रजोगुण का काम है, इसलिए 7 दिन में भागवत को पूरी करते हैं जल्दी में। शंकर जी 1 साल भागवत का पाठ पूरा करते हैं, और पार्वती 2 साल में पाठ करती। अब आप देखिए, जितने भागवत, जितने हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं, ब्रह्मा जी हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, भागवत का पाठ करते हैं, भागवत आचार्य हुए, भागवत परंपरा हुई कि नहीं? शंकर जी दूसरी वैष्णव के परंपरा के आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के, वो भागवत का पाठ कर रहे हैं। तीसरा कौन है वैष्णव संप्रदाय का? लक्ष्मी जी, श्री संप्रदाय। लक्ष्मी तो दो महीना पाठ करती है भागवत का। चौथे रह गए कुमार, वो सीख के आए हैं सीधा अनंत शेष से। वो कहते हैं ये तो तीसरे स्कंद में आता है, जब मैत्री अपनी परंपरा सुनाता है कि भगवान अनंत शेष बलराम से कुमारों ने भागवत सुने और कुमारों ने सामख्यायन ऋषि को सुनाई, वहां से पराशर ऋषि से हमने ये सुनी है। तो वो परंपरा कहां से आई है? बलराम जी से। तो ये चारों वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय है, चारों के प्रवर्तक भागवत आचार्य हैं। तो भागवत ये सब देव एक दूसरे को सुना रहे हैं, और फिर आचार्य किसको बनाया? व्यास देव ने प्रकट तो किया लेकिन स्वयं कथा नहीं की, सुखदेव को भागवत का आचार्य करके प्रसिद्ध किया। और जिसको न कोई मेंटेन करने की जरूरत, न घर के कपड़ा ही नहीं है तो करेगा क्या? सुखदेव को कथा करने से कुछ किसी से लेना है क्या? वो तो कपड़े का ही झंझट नहीं रख रहा था, इतने इस स्तर का महात्मा था। तो उससे भागवत करा के क्यों उसको क्यों आचार्य बना दिया? ये भागवत सबके निश्चय है, सबके भले के लिए है। इसको तो पेड़ के नीचे बैठ के कथा चलती रहनी चाहिए, जो आए जब आए तब सुने, जैसे भगवान की कृपा 12 महीना बरसती रहती है, ऐसे ये भागवत का अमृत सदा बरसता रहना चाहिए। इसमें व्यवधान पढ़ना ही नहीं चाहिए। इतनी महंगी कथा हो गई है कि कथा कराने वाला सोचता है, हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप क्या लेंगे कथा का? हमने बोला हम प्रसाद लेते हैं, कथा का भूख लगती है तो प्रसाद खिला देना भाई तुमसे हो सके तो, नहीं तो मंदिर से खा के आ जाएंगे, और लेंगे क्या? तो ये पूछने की बात, मतलब ये बहुत बड़ी सावधानी। ये कह रहे हैं स्वरूप दामोदर जी के, कथा सुनो भागवत की निश्चित रूप से सुनो, लेकिन उससे सुनो जो भागवत पुरुष है। तब ये प्रश्न उठा कि हमारे पास भागवत पुरुष कहां है? तो श्रील प्रभुपाद जी भागवत पुरुष है, उसके शास्त्र को हम सामने रख के और उस भागवत पुरुष की वाणी को ही वर्णित करते हैं। तो ये भागवत पुरुष है, ये भागवत पुरुष की वाणी का वर्णन करते हैं। असल में यही भागवत का सही अर्थ है। भागवत का अर्थ है भागवत भागवत भक्त और भागवत ग्रंथ। तो ये भागवत श्रील प्रभुपाद की वो दोनों का संपुट है। एवं भागवत भगवान का अवतार भी है और प्रभुपाद भागवत पुरुष का उसमें तात्पर्य भी है। तो ये परिपूर्ण भागवत है, जिस दोनों एक ही जगह पे ग्रंथ भी है और भागवत पुरुष भी है। तो भागवत पुरुष से भागवत सुनना चाहिए। और फिर सनातन गोस्वामी का उदाहरण क्या देते हैं? दूध बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, लेकिन अगर उस दूध को सर्प छू ले और उसके अंदर विष डाल दिया जाए तो पीने से प्राण ले लेगा। ऐसे भागवत तो अमृत है, लेकिन अगर उसकी जीभा से निकले जो विषयों में फंसी हुई है, या विष का अर्थ है विषय, स्वयं विषयी हो और भागवत के विषय में बोलने का प्रयास करे तो सामने वाले को कैसे विषयों से बचाएगा? सामने वाले को विषयों से बचाएगा कैसे जब स्वयं ही विष ही उगल रहा है? अब भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। कहां से? बोला भागवत से, और भागवत की महिमा बता दी। अब आगे कहते हैं, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तदिदं ग्रहायाम आस सुत्तम आत्मवताम वरम सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। अब सूत गोस्वामी कहते हैं सुनो सनकादि ऋषियों, तद इदं ग्रहायाम आस, वो भागवत जो व्यास देव ने प्रकट किया उसको ग्रहायाम मतलब उसको प्राप्त कराया, उसको दिया अथवा ग्रहण किया किसने? सुत्तम अपने पुत्र को। कैसा है पुत्र? आत्मवताम वरम। भाई जिसके पास धन होते हैं उसको कहते हैं धनवान, जिसके पास आत्म का ज्ञान है उसको कहते हैं आत्मवान, और जो पापी है उसको कहते हैं अघवान, और जिसके पास भगवान है उसको कहते हैं भाग्यवान। तो ये है आत्मवताम वरम। वरम का मतलब एक तो वरम का मतलब होता है वरिष्ठ, मतलब सबसे उत्तम, वरम मतलब सबसे उत्तम। तो आत्म साक्षात्कार किए हुए ब्रह्मनिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है सुखदेव गोस्वामी। आत्मवताम वरम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। कौन से में सर्वश्रेष्ठ? ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानता है उसमें श्रेष्ठ। आत्म का यहां अर्थ ब्रह्म करें तो ब्रह्मवताम, जो ब्रह्म के स्तर पे ब्रह्म आनंद में जो परिपूर्ण है वो है, ऐसे सूत गोस्वामी, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को ग्रहण कराया। अब में से किसी ने ये श्रवण पहले किया हो, सुखदेव गोस्वामी तो जन्म लेते ही वन में चले गए, तो व्यास देव ने कहा कि भागवत को तो केवल सुखदेव ही प्रकट करके संसार में जो है प्रचलित कर पाएगा। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक याद कराए, और जहां सुखदेव ब्रह्म आनंद ओ बकी काल कूटम, हे बकासुर की बहन पूतना, अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा के कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसके दुष्ट भाव के विष को न देख के दूध पिलाने वाले मां के भाव को देखा और उसको धात्री गति दे दी। इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता है? मारने वाले को भी मां का स्थान दे दे, इससे बड़ा दयालु कौन होता है? और सुखदेव महाराज का ब्रह्म आनंद तो एक बिंदु जैसा लगा, और इसको पीछे भागा कौन, किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, गुरुजी को मालूम है। फिर वापस आके बैठ गए। कुछ दिनों के बाद दूसरा एक श्लोक गाते हुए निकले वहां से, और वो गोपियों के गीत का श्लोक था, ब्रहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणिकारकम। अरे भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए ग्वाल बालों के संग जब वन में प्रवेश करते हैं, वैजंती माला पहनी है, कान के ऊपर कनीर का पुष्प है, और ये सुखदेव गोस्वामी पीछे भागा कि किसका सुंदरता का वर्णन कर रहे, बोला गुरुजी। और वापस आए और व्यास देव के पास बैठ के 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया, और फिर स्वयं सुखदेव कहते हैं मैं ब्रह्म आनंद में परिपूर्ण था, लेकिन भगवान की लीलाओं ने मुझे आकर्षित कर दिया। अब वो आनंद मुझे ऐसा लगता है ब्रह्म आनंद जैसे एक बिंदु था और ये अथाह सागर है। ये बहुत बड़ा सुखदेव महाराज का अपना अनुभव है। आत्मा राम समुन्य, जो आत्मा राम है, ये शब्द क्या है? ये आत्मवान, आत्मता वरम मतलब आत्मा राम, उनको भी भगवान की लीला अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो उन्होंने ये सिखाया, किसको सिखाया? अपने पुत्र को सिखाया। कैसा पुत्र था? आत्मवताम वरम मतलब ब्रह्म साक्षात्कार की ओर वालों में सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्म आनंदियों का श्रोमणि। क्या है इस भागवत में, क्या सिखाया? बोला सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम, सारे वेद का और सारे इतिहास का, इतिहास का मतलब हो गया महाभारत, यहां इतिहास महाभारत को कहते हैं। हमारे दो इतिहास है, रामायण और महाभारत इतिहास है, चार वेद है और इतिहास। इतिहासाम सारम सारम, उनका जो सार है, उदाहृतम समुदृतम, समुदृतम का अर्थ क्या होता है? समुदृतम का अर्थ ऐसा होता है कि ऊपर से मक्खन मक्खन निकाल लेना, मलाई मलाई निकाल लेना। उद्धृत का मतलब ऊपर जो होता है, जो असली है, सम्यक रूप से अच्छी तरह से जो मलाई मलाई थी इन सारे शास्त्रों के अंदर, जो मलाई मलाई थी उसको निकाल लिया। समुद्रता का मतलब है मलाई, क्रीम। ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी जो प्रचार कर रहे थे पाश्चात्य देश में, तो बहुत से लोग हिप्पी बन गए थे। उसमें कुछ हिप्पी तो कुछ हिप्पी ऐसे बनते हैं जिसके बाद कुछ है नहीं तो और क्या करें, और कुछ हिप्पी ऐसे बड़े बड़े धनियों के बेटे थे जिनको सुख की तलाश थी, जो उनके घर के अंदर धन में सुख नहीं था। तो श्री प्रभुपाद ने उसके अंदर से समुद्र था, उनके अंदर से जो क्रीम क्रीम थी उसको चुन लिया और उनको निकाला जो सुख ढूंढ रहे थे, और उनको भगवान की इस भागवत अमृत का सुख दिया, तो वो आनंद से मगन होकर नृत्य करने लगे। और जो बाकी ऐसे जो छाछ वाले थे वो तो रह गए पीछे, लेकिन जो समुद्र जो ऊपर ऊपर मक्खन मक्खन था उसको निकाल लिया। तो भगवान यहां कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को वो सार सार मक्खन, इसलिए बच्चा छोटा होता ना उसको मक्खन खिलाते हैं, तो दूध नहीं मक्खन खिलाना, पुराने जमाने में बच्चे को मक्खन खिलाते थे, सार सार खिलाते थे। अभी तो मक्खन कोई नहीं खिला, मक्खन है नहीं तो खिलाएंगे क्या हा? अब बच्चों का मक्खन खिलाने वाला पहले वो हमारे तो भाषा में कहते एक दुक्का, मतलब एक तोला, एक तोला बच्चे को मक्खन तो रोज खिलाना है, और बच्चा मक्खन खा के सो जाता था, कोई शरारत नहीं, चुप करके सो जाएगा, बच्चे को मक्खन खिलाओ सो जाएगा। रोज मक्खन है ही नहीं तो खिलाएंगे क्या, अब अमूल का मक्खन बच्चा खाएगा ही नहीं। बोला किसे कोई मोल नहीं है उस मक्खन का, क्या करें, अमूल कोई मोल नहीं है, बेकार सा है। तो मक्खन, ये मक्खन मक्खन सार सार बता दिया। श्री प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि इस संसार के लोग कहते हैं इतिहास जो है हमारी, हमारा इतिहास है वो बुद्ध से 4-5 साल पहले शुरू हुआ है। बुद्ध के समय से इतिहास को हमारे लोग जानते हैं कि ईसा से 4-5 साल पहले, उससे पहले क्या इतिहास था इनका तो पता नहीं है। और कहते हैं वो तो सब ऐसी दंत कथाएं हैं, और ये कहते हैं इतिहास, हम सारे इतिहास का सार। और प्रभुपाद जी फिर एक सावधान करने के लिए लिखते हैं कि हमारे वेदों शास्त्रों में जो इतिहास है वो केवल इस लोक का नहीं, वो और लोकों का भी इतिहास है। और लोकों का इतिहास जब हम यहां सुनते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर गया नहीं है, उसको कोई कहे कि भाई रोड के उस तरफ गाड़ी नहीं चलानी है, इस तरफ चलानी है, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में चलानी, राइट में नहीं चलानी, बोले ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भाई तुम्हारे देश में ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन बाहर के देश में ऐसे होता है। भाई दुनिया में सवाय ब्रिटिश जहां राज किया है, बाकी सब जगहों पे तो गाड़ी उल्टे तरफ चलाते हैं, जो हम चलाते हैं इसके बिल्कुल उल्टे तरफ चलाते हैं दुनिया में, है कि नहीं है? अब हम कहेंगे नहीं वो हम मानते नहीं है उसको, भाई हमारे न मानने से क्या होगा, दुनिया में है तो सही ना। तो हमारे लोक की हमारे को थोड़ी सारी जानकारी है, लेकिन और लोकों में क्या है उसका वर्णन इन शास्त्रों में, उसको हम कैसे जाने। एक जगह ऐसा लिखा है कि ऐसे लोक में ऐसे पक्षी हैं जो मानव कोई ऐसे उठा के आकाश में ले जाए। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद ऐसा पक्षी कैसे है मानव को ले जाएगा? तो प्रभुपाद ने उसको कहा, यू आर स्टिल चाइल्ड, भाई तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता दूसरे लोकों में क्या होता है, भाई दूसरे लोकों में क्या शक्तिशाली कितना बलवान लोग हैं वहां, उसका हम यहां अनुभव तो नहीं कर सकते, वहां का नेम क्या है इसका भी हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस लोक में नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, हमारे अनुभव में नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो झूठ है। जैसे हम इसका उदाहरण देना है तो ऐसे देते हैं, दवाई के दुकान वाला ऐसी ऐसी दवाएं रखते हैं जिसको जहर बोला जाता है। भाई कितनी वैरायटी की दवाएं पड़ी, हमारे लिए नहीं है लेकिन किसी किसी को वो कीमोथेरापी देनी है तो किसी को तो देनी पड़ेगी ना, तो उसको तो फायदा देती है, सबको तो नहीं, दूसरे को मार देगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन किसी और के काम की है। तो भागवत के अंदर इतना सारा वर्णन है तो इसमें कई लोकों का है, इसलिए बहुत सी चीजें दूसरे स्कंद के बाद भागवत को समझना आसान नहीं है। उसके बाद जो कथाएं हैं वो कई और लोगों की, इसलिए वो सामान्य रूप से हमारी बुद्धि में आ नहीं सकती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, महाभारत और पुराणों इसके अंदर जो कथाएं हैं उनका हमारे को अनुभव है ही नहीं इस जगत में। और भागवत में आई कैसे कई लोगों की कथाएं हैं, एक लोक की नहीं है, कई लोगों की कथाएं, इसलिए इसको महापुराण बोलते हैं। अब हम और फिर सुखदेव गोस्वामी की महिमा का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं और व्यासदेव ने उसको तैयार किया और सुखदेव गोस्वामी ने उसको प्रकट किया है। और सुखदेव गोस्वामी का कथा बताने के पीछे कोई भी, सुखदेव महाराज को तो कोई जानता ही नहीं था जब कथा सुनाने आ रहे थे। हस्तिनापुर के अंदर से निकले तो इंद्रप्रस्थ में उसको पागल समझ के, नंगा सा लड़का समझ के लड़के और लड़कियां पत्थर फेंक रहे थे। और वो जब उस सभा के निकट पहुंचा तो सब ऋषि उठ के खड़े हो गए और परीक्षित महाराज उठ के खड़े हो गए, तो बच्चे लड़कियां भाग गई और उन्होंने सम्मान के साथ उसको व्यास आसन के ऊपर बिठा दिया। वहां उनका पिता व्यास बैठा था और व्यासदेव का गुरु नारद बैठा था। उनके बीच में सुखदेव को वहां विराजमान कर दिया। यहां इसलिए लिखा है सुखदेव जो है परम भागवत है। अब आगे की कथा परंपरा की बताते हैं। सत्तो संश्रव्यामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपप्रविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। अब आगे कहते हैं स वही भागवत जो सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने दी, उसी को तो संसृष्याम आस, मैंने उसका श्रवण किया। ये शब्द क्या है? संसृष्यायाम, सृष्यायाम सुनना, सम अच्छी तरह से सुना, ध्यान से सुना, बड़ी गंभीरता से सुना। कहां? महाराज परीक्षित, जब महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। वही भागवत जो व्यासदेव ने सुखदेव को दी, सुखदेव महाराज ने परीक्षित को जब सुनाई थी, कहां सुनाई थी? गंगायाम, गंगा के किनारे पे। प्राय उपविष्टम, जहां परीक्षित महाराज, यहां शब्द क्या है? प्राय, प्राय का मतलब प्रायण, प्रायण का मतलब शरीर छोड़ना। हाँ, क्या शब्द है भगवद गीता में प्रायण? प्रयाण काले, वो प्रयाण वही है, ये प्रयाण काले मन, हाँ, क्या है प्रयाण काले मनसा स्मरण, क्या शब्द है? जो भी प्रयाण शब्द जो है मतलब शरीर छोड़ना, प्रयाण ये शब्द है। प्रयाण, प्रियाय, प्रियाय मरने के लिए उपविष्टम बैठा था, अंजल त्याग करके गंगा के किनारे जब परीक्षित महाराज, अब उसको कोई कुछ संसार से लेना नहीं था, वो राजपाठ का खजाने रानियों का त्याग करके बैठा था गंगा के किनारे। और कैसे बैठा था? परीतम, चारों ओर से ऋषि बैठे थे, अकेला नहीं बैठा था। इसका मतलब भागवत सारे ऋषियों का अनुमोदित है, जितना ऋषि वर्ग समाज है, ऋषि जिन ऋषि, जिस भी ऋषि का नाम लो वहां बैठा हुआ है, घिरे हुए थे परीतम, चारों ओर से ऋषि बैठे हुए थे। परम ऋषि भी ही, जो परम ऋषि थे, महान ऋषि थे, उन सबका नाम नाम है, उनसे घिरे हुए जब बैठे थे, तब परीक्षित को जब सुनाया, तब अब सूत गोस्वामी अपनी बात कह रहे हैं, मैंने उसको ध्यान से सुना। और ऐसे मानते हैं कि ये सूत गोस्वामी बैठा था तो सुखदेव ने कहा आप नजदीक आके बैठो, इसको ध्यान से सुनो और ये आपको आगे इसको संसार में प्रचार करना है। तो ये सूत गोस्वामी उगर सर्वा, असल में ये सूता गोस्वामी की भागवत परंपरा भी बलराम जी ने शुरू की। इससे पहले पुराणों के सूता, भागवत को छोड़ के बाकी पुराणों के सूता जो है वो रोमहर्षण है, वो व्यासदेव का शिष्य है। लेकिन बलराम जी ने कहा कि अब भागवत का प्रचार होना है तो इसकी परंपरा मैं अपनी तरफ से चलाऊंगा। तो रोमहर्षण का वहां तिनके से उधार कर दिया और उसके बेटे उगर सर्वा को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया और वो भागवत परंपरा का आचार्य बना। तो ये भागवत परंपरा की आचार्य जो ये सूता भागवत का है, ये उगर सर्वा है, ये शिवदेव का शिष्य है, बलराम जी का कृपा पात्र है सीधा, और व्यासदेव की गोद में खेला है, ये बड़ा भाग्यशाली है। यहां भागवत की परंपरा का वर्णन किया जा रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ये दूसरे स्कंद में आएगा। वहां ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ने मुझे संक्षेप में ये भागवत दिया, नारद मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका विस्तार करो, विपुली करो, इसका विस्तार करो। तो भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, यहां इस अध्याय में नारद ने व्यास को दिया और व्यास ने सुखदेव को सिखाया, सुखदेव ने सूत गोस्वामी को दिया। तो ये हुई परंपरा भागवत की। तो इस तरीके से ये भागवत परंपरा में आई है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तक के शंकर आचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत हे मूर्ख, तुम्हारे को ये वेदांत और इसके व्याकरण से कुछ नहीं काम आएगा, अंत समय तुम गोविंद के नाम का सुमरण कर ले। तो सारे आचार्य सुखदेव शंकर आचार्य तक भी भगवान के इस गुणगान करते हैं। अब अपन अंतिम श्लोक तक पहुंचे, नहीं दो श्लोक और हैं, आगे का श्लोक पढ़िए। अब ये श्लोक जो आ रहा है ये भागवत के ऋषियों के छठे प्रश्न का उत्तर है। ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, उसमें आखिरी प्रश्न क्या था, ऋषियों का आखिरी प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो उसके बाद धर्म ने किसका शरण लिया, क्योंकि भगवान आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, तो धर्म का शरण किसने लिया। तो उसका उत्तर देते हुए ये श्लोक है, आप पढ़िए श्लोक को, पाठ कीजिए। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिस्सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अरको अधुनोदितः कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अरको अधुनोदितः। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए रवाना हुए, इसका मतलब है भगवान अपने धाम से उतर के आए थे और समय कुछ यहां रहे, और जब उनका समय पूरा यहां की लीला का हुआ तो अपने धाम चले गए। और ये 12वें ये 11वें स्कंद में आता है कि सारे ऋषि ब्रह्मा जी के साथ आए और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि जिस काम के लिए हमने प्रार्थना की थी वो धर्म की स्थापना हो गई, धर्मराज युधिष्ठिर को आपने राजा के रूप में स्थापित कर दिया है, अब आप अपने धाम जाना चाहें तो भगवान निश्चित रूप से जाइए, लेकिन जाते हुए हमारे लोक से भी होते जाइए और वहां भी आपके चरण पड़े, ऐसा प्रार्थना करके चले गए। तो उसके बाद भगवान ने अपने लोक जाने का संकल्प किया। तो भगवान जब अपने लोक चले गए तो क्या हुआ, धर्म ज्ञान आदि भी सह धर्म और ज्ञान के साथ, धर्म के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ वैराग, आदि भी का मतलब वैराग आदि सहित। कलौ नष्ट दृश्यामेश, कलयुग के लोग जिनकी दृष्टि नाश हो गई है, जो अज्ञान से परिपूर्ण रूप से भरे हुए हैं, उनके लिए पुराण अर्को, ये पुराण रूपी सूर्य, भागवत रूपी सूर्य, अंधकार को नाश करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए ये सूर्य के रूप में अधुनो उदित और फिर दोबारा जस्ट अभी अभी प्रकट हुआ है, भागवत अभी प्रकट हुआ है, ये भागवत रूपी सूर्य का प्रकट हुआ है। तो सूर्य का प्रकट होने का अर्थ क्या, उदाहरण सूर्य क्यों दिया, क्योंकि सूर्य का जन्म मरण होता नहीं, सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अप्रकट हो गए। सूर्य से उदाहरण देने से यह सिद्धांत स्थापित होता है कि सूर्य के उगने को कोई जन्म नहीं कहता है और सूर्य के अस्त को कोई मरण नहीं कहता। सूर्य उगा और सूर्य अस्त हो गया, भगवान कृष्ण अवतार लेके प्रकट हो गए और फिर अप्रकट हो गए। तो भगवान का जाना कैसे, जैसे सूर्य का अस्त होना। तो जब भगवान के श्री विग्रह के सूर्य का अस्त हुआ तो तो उस वक्त भगवान के वांगमय रूप भागवत का प्रकट्य हुआ। तो उस वक्त भागवत सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। और क्या इस भागवत के अंदर है? धर्म और ज्ञान आदि भी। आदि भी का मतलब और भी धर्म के लिए जो चीजें जरूरी है, या धर्म का अर्थ है भागवत धर्म, और ज्ञान आदि भी का अर्थ है भागवत धर्म के दो फल हैं, ज्ञान और वैराग। तो गैरान वैराग सहित, भक्ति ज्ञान वैराग सहित भागवत धर्म के दो फल हैं, भक्ति के दो फल हैं ज्ञान और वैराग। इन दोनों के साथ ये भागवत रूपी सूर्य का उदय अभी अभी हुआ है। तो यहां भगवान के अवतार के वर्णन में है सब कुछ। ये कलयुग से थोड़े पहले ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, द्वापर के अंतिम चरण में। और ये भागवत जो है टार्च है, जैसे लाइट है कलयुग के अंधेरे अंधकार में अज्ञानी लोगों का धर्म मार्गदर्शन करने के लिए। और अब अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। अब परीक्षित को, अब सूत गोस्वामी सनक आदि ऋषियों को कहते हैं, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र ऋषिर भूरि तेजस अहम च अध्यगमं तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात् सोहम वह स्वाव्याश्रयामि यथा अधितम यथा मति। तो अब सूत गोस्वामी अपनी बात बताते हैं। तत्र कीर्तयन्तो विप्रा विप्र ऋषिर भूरि तेजाः, जहां भागवत सुनाई जा रही थी सुखदेव महाराज के द्वारा, ये ब्राह्मणों, वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे थे, महोत तेजस्वी थे, भूरी जन भूरी तेजस, बड़े बड़े तेजस्वी ऋषि बैठे थे। मैं भी अधिगमयम, मैं भी वहां बैठे सुन रहा था, मैं भी उसको च अधिगम अधि अध्यगमम अध्यगमम अध्ययन किया, मैंने भी अच्छी तरह से सुना। तत्र और क्या किया, निविष्ट, मेरा मन पूरी रूप से उसके सुनने में प्रविष्ट था, बड़े ध्यान से मैंने सुना। तद अनुग्रहात, सुखदेव महाराज की कृपा से, मैंने अपने बल से नहीं, उनकी कृपा से, अनुग्रह से, उन्होंने मेरे को अपना जानकर जो बताया वो मैंने ग्रहण किया। सो अहम, वही आज मैं वह आपको सर्वश्यामी आपको सुना रहा हूं। बोले कितना सुनाओगे सुखदेव, जितना सुनाओगे? बोले नहीं, यथा अधितम, जितना मैंने अध्ययन किया, और यथा मति, जितना मैंने अनुभव किया, जितना मैंने अनुभव किया और जितना मैंने समझा उतना मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं। तो क्या सुनना चाह रहे थे ऋषि? अब ये ऋषि क्या कर रहे थे, 88,000 ऋषि, और ये सारे थे ऊर्ध्वरेता, सनक ऋषि के नेतृत्व में प्रयागराज में गए थे कि कलयुग को रोक देंगे, बड़ा यज्ञ कर देंगे करेंगे। और प्रयागराज में इतनी भीड़ रोज यात्रियों की आए कि उनके काम हो नहीं पाया। तो जाके बिंदु सरो, वहां वेणी माधव है, त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती वेणी के रूप में है, और माधव कृष्ण है। तो त्रेणी वैसे भी सरस्वती ना, वैसे जमुना जी तो कृष्ण की पटरानी है ही, गंगा भी भगवान के ब्रह्म द्रव्य है। तो वेणी माधव को प्रार्थना की कि हम कहां जाके अनुष्ठान करें, बहुत समय तक के लोगों को कलयुग ज्यादा सता न सके, कलयुग के आगे बढ़ने वाले कदमों को रोक सके। तो भगवान वेणु माधव ने कहा, ये मेरा चक्कर, मैं रवाना करता हूं, आप इस चक्कर के पीछे चलो, जहां ये चक्कर विराम करे विश्राम करे वहीं आप अनुष्ठान करना। तो आगे वेणी माधव का चक्कर चला और पीछे ये सब ऋषि चले, और ये चक्कर वहां से नैमिषारण्य के स्थान के ऊपर आके पाताल में चला गया। वहां चक्कर तीर्थ प्रकट हुआ, उसको नैमिषारण्य कहते हैं। वहां बैठ के ये दीर्घ काल तक यज्ञ करना शुरू किया। और यज्ञ का ये नियम है कि जैसे दोपहर के बाद पूर्णा होती है तो शाम को कथा सुनी जाती है, क्योंकि यज्ञ के बाद बेकार की बातें ना हो इसलिए शाम को कथा होती। तो सूत गोस्वामी वहां आए तो उन्होंने कहा कि अभी यज्ञ तो हम कर ही रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यज्ञ है, लेकिन शाम को आप कथा सुनाई। और तब जब प्रश्न पूछे, छह प्रश्नों में एक आखिरी प्रश्न ये था कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका शरण लिया, बोला भागवत का शरण लिया। और फिर कहा वही भागवत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पहले स्कंद में ही वही ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी, ये यज्ञ करते करते धुएं से बाहर से तो सब कुछ हमारा काला हो गया लेकिन अंदर साफ नहीं हुआ। अब इस यज्ञ को हम ऐसा करेंगे सुबह 9 बजे से पहले पूर्णाहुति कर देंगे और ये आपकी कथा की अमृत आप हमारे को प्रवाह रूप से पिलाते रहिए। तो ऋषियों ने अपने यज्ञ के जो यज्ञ का जो मुख्य उनका अंग था उसको संक्षेप कर दिया और कहा कि ये हमारे को लाभ नहीं दे रहा, इसका तो धुआं उठ रहा है, हम दूषित हो रहे हैं लेकिन हमारा अंदर साफ नहीं हो रहा है, अब आप कृपा करके ये कथा का अमृत पिलाइए। तो उन्होंने यज्ञ जो पहले 4 बजे पूरा करते थे वो 9 बजे समाप्त कर देते थे और 9 के बाद कथा चालू होती थी और शाम तक कथा चलती रहती थी। तो भागवत की कथा का ऐसा महात्म बताया है। तो मैं आपको ये कथा मनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए, पूरे इसके तात्पर्य में उससे सुनना चाहिए जो कम से कम विषयों से, विषयों के भोग से परे हो। अब एक और सिद्धांत इसमें बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। केवल सुनना ही काफी नहीं है, कुछ अनुभव भी जीवन में होना चाहिए। जीवन में अधिकतम तो होता है सुनना, अध्ययन करना, लेकिन उसके बाद यथा मतिम कतल, मतलब मति का अर्थ क्या होता है, जितना मेरे मन ने ग्रहण किया है, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है। मति का मतलब ग्रहण करना, अनुभव क्या है मेरा। तो सुनने के साथ अनुभव बहुत मुख्य है और ऐसे से सुनना चाहिए जो अनुभवी हो। इसके बाद ये लाइन सुन लीजिए क्या है आखिरी। द सीक्रेट ऑफ नोइंग भागवतम इज मेंशन हियर, यहां भागवत को जानने का जो रहस्य है वो बताया गया है। क्या है? नो वन कैन गिव रैप्ड अटेंशन हु इज नॉट प्योर एंड माइंड, जिसका मन शुद्ध नहीं होगा वो भागवत ध्यान से सुन नहीं पाएगा। अब कहते हैं नो वन कैन बी प्योर एंड माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शंस, और जिसके जिसके कर्म शुद्ध नहीं होगा उसका मन शुद्ध नहीं होगा। क्या एक्शन का मतलब कर्म, जिसके कर्म शुद्ध नहीं होगा उसका मन शुद्ध नहीं होगा। और फिर कहते हैं नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन हु इज नॉट प्योर इन ईटिंग स्लीपिंग फियरिंग एंड मेटिंग, और जिसका जिसका उसका कर्म शुद्ध नहीं हो सकता है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, जिसका रहन सहन सोना उठना बैठना ये सब शुद्ध नहीं है, वो भागवत में रुचि नहीं ले सकता है। तो पहले लिखा ये 4 चीजें लिखी हैं जो संसार में बंधन का कारण है, ये शुद्ध कैसे हो, सोना कैसे शुद्ध हो, मतलब सब पुरानी जमाने की कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अभी तो ये बात ही भूल गए सब लोग के पहले जल्दी सोना जल्दी उठना, ये तो पुरानी कहावत है, ये तो समाप्त हो गए। हमारे वक्त तो पढ़ाते थे कविता में सवेर सुमजे सवेर उठजे अवल धनी जो नालो गिनजे, पहले जल्दी सो जल्दी उठो पहले भगवान का नाम लो, ये हमारे को बचपन में स्कूल में पढ़ाते थे। अभी स्कूल में जिमटी पिमटी पता नहीं किमटी कहां से चिमटी आ गई, ये इतना कितना अच्छा सा ये पढ़ाते थे, सवेर सोना सवेर उठना, पहले उठ के भगवान का नाम लेना और फिर होता था माता पिता का कहना मानना। जब ये 4 लाइन है बचपन में पढ़ाते थे स्कूल में कि सवेर उठना सवेर सोना, पहले उठ के भगवान का नाम लेना और फिर माता पिता का कहना मानना। अब ये चारों चीजों के ऊपर पानी फिरा है कि नहीं आज की पढ़ाई में है? देर से सोना किसी को हमने कहा देखो सूरज उगने से पहले स्नान करना चाहिए, सूरज स्नान करते हुए नहीं देखे, बोला कभी नहीं देखते हम शाम को करते हमको देखता ही नहीं अब सुन लीजिए, अब ये जो कसौटी है इसके ऊपर हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो एक लाइन प्रभुपाद ने बड़ी आसान कर दी, क्या है ये लाइन आखिर सुन लीजिए, बट का मतलब ये नहीं हो सकता है क्या कर सकते, परंतु का मतलब मन शुद्ध नहीं हो सकता। और ये सत्य है कि मन शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों मन शुद्ध नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे कर्म शुद्ध नहीं है। और हमारे कर्म शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा आहार व्यवहार सब कुछ शुद्ध नहीं है। जैसा अन्न तैसा मन, वाजर कहते हैं ना, जैसा वातावरण है। तो फिर परंतु कहने का मतलब ये नहीं हो सकता है, बट समहाउ और अदर इफ समवन हियर्स विद रैप्ड अटेंशन फ्रॉम ए राइट पर्सन, इसका मतलब ये सब कुछ नहीं है लेकिन कोई अच्छे साधु से सुनने का मौका मिल जाए, इसका मतलब है जीवन में सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है साधु संघ से। ये श्लोक सातवें अध्याय के भगवत गीता का यहां उद्धृत करके बोलना चाहिए, तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह नुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो इसमें मुख्य शब्द क्या है? जिसके पाप नाश हो गए हैं, पुण्य उदय हो गए हैं, पाप नाश हो गए हैं, पुण्य उदय हो गए हैं। बोला पुण्य किसी का कैसे उदय होता है? भाई पुण्य उदय होगा किसी साधु का संग हुआ, पुण्य होता है साधु के संग से। और असल में पुण्य है क्या? तब भागवत का ये श्लोक उसी वक्त बोलना चाहिए, श्रोणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना पुण्य है, भगवान की कथा श्रवण करना। अगर ऐसा किसी का पुण्य उदय हुआ है और ऐसे किसी भागवत पुरुष प्रभुपाद की परंपरा में भागवत को सुनने का सौभाग्य मिला है, तो निश्चित रूप से उसका मन, उसके कर्म, उसका खान पान सब तत्काल शुद्ध हो जाएगा। और ये प्रमाण हमारे पास देखने के लिए पाश्चात्य देशों के अंदर काले अफ्रीका के और गोरे अमेरिका के लोगों को देखो, उनके खान पान में पवित्र आ गया, वो शुद्ध वैष्णव हो गए, उसका आहार व्यवहार, उनका कपड़ा वस्त्र केवल एक व्यक्ति के शुद्ध श्रवण से, प्रभुपाद के मुख से सुनने से इतने सारे लोगों के अंदर परिवर्तन आया और उनका जीवन ही बदल गया। तो ये प्रभुपाद ने अपना अनुभव लिखा है कि ऐसे किसी के भाग्य में ऐसा श्रवण मिल जाए तो बड़ा भाग्यशाली है। यहाँ कथा को विराम देते हैं, कल इससे आगे वाले अध्याय में प्रश्न पूछेंगे ऋषि कि भागवत कहाँ, भागवत का प्रकट्य हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसकी प्रेरणा से हुआ, फिर परीक्षित महाराज नौजवान की छोटी उम्र में कैसे राज छोड़ दिया, सुखदेव तो ब्रह्म आनंद में थे, उसने भागवत को कैसे पढ़ा। तो ये सारे प्रश्न आएंगे, इसके उत्तर में चौथा पांचवा और छठा अध्याय चलेगा। हरे कृष्ण। किसी कोई जिज्ञासा है, कुछ जिज्ञासा या कोई प्रश्न है? यहाँ श्लोकों में नहीं है, ये तो अन्य स्थानों से कथा है, ये और जगहों पे, यहाँ नहीं भागवत में नहीं। अच्छा वो भागवत में श्लोक कौन से है? वो तो मिल जाएंगे, वो तो मुश्किल नहीं है। तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय, ये तीसरे अध्याय में होगा एक, और दूसरा है दसम स्कंद, दसम अभी निकाल के देते, अभी देते निकाल।